लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम अपने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस, अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। श्रोताओ, हमने दिल एक्सित नोस के पांचवें अध्याय की शुरुआत की है जिसका शीर्षक है प्रेम के बदले प्रेम। इस अध्याय की शुरुआत करते हुए हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि यीशु के बेधित हृदय पर चिंतन करते हुए जो हमारी सारी कमजोरियों और बीमारियों को अपने ऊपर लेते हैं, हम भी दूसरों के दुखों और जरूरतों के प्रति और अधिक सजग होने हेतु बुलाए जाते हैं और हमारे प्रयासों से इस बात की पुष्टि करने को कहे जाते हैं जहां उनके प्रेम को प्रसारित करने के साधन स्वरूप हम उनकी मुक्ति के कार्य में सहभागी होते हैं। यीशु ख्रिस्त का अपने को हम सबों के खातिर देने पर चिंतन करते हुए हम स्वाभाविक रूप से इस बात को अपने में पूछने हेतु अग्रसर होते हैं कि हम भी दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित करने को क्यों ना तैयार हों। हम इस तथ्य से यह जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, अतः हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए अपने जीवन को अर्पित करें। यीशु ख्रिस्त के हृदय की भक्ति के संबंध में हमारे भाई बहनों की निष्ठा ख्रिस्तीय आध्यात्मिकता के इतिहास की एक निरंतरता रही है। हम इसके संबंध में कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। श्रोताओ, ओरिजिने से शुरू करते हुए हम कलिसा में बहुत से आचार्यों को देखते हैं जिन्होंने संत योहन के सुसमाचार अध्याय 7 के पद 38 उसके हृदय से जीवन धारा की नदियां बह निकलेंगी पर चिंतन किया है, जो उनके बारे में कहता है जिन्होंने ख्रिस्त में पान करते हुए उन पर विश्वास किया। ख्रिस्त के संग हमारा संबंध केवल हमारी व्यक्तिगत प्यास की तृप्ति हेतु नहीं है, लेकिन यह हमें अपने को दूसरों के लिए जीवन का झरना बनाना है। ओरिजेन ने हमारे अंदर उमड़ते हुए जल स्रोत की चर्चा करते हुए ख्रिस्त की प्रतिज्ञा के बारे में लिखा, मानव जो ईश्वर के प्रतिरूप में गढ़ा गया है वह स्वयं अपने में जल स्रोत, जलधारा और नदियों को वहन करता है। संत अम्ब्रोस ख्रिस्त में हमारे गहराई से पान करने की बात कहते हैं जिससे अनंत जीवन का जल हम में उमड़ता और हमसे प्रवाहित होता है। मारियस विक्टोरिनुस अपने में इस बात से सुनिश्चित थे कि पवित्र आत्मा ने हमें अपने को इस हद तक बहुतायत में दिया है कि जो कोई उसे ग्रहण करता वह हृदय बनता है जो जीवन जल धारा की नदियों का स्रोत होता है। संत अगुस्टिन ने विश्वासियों में इस जल स्रोत को भलाई के रूप में बहते हुए देखा। संत थॉमस अक्विनस इसके संबंध में कहते हैं कि जब कोई अति शीघ्रता में ईश्वर से मिले विभिन्न उपहारों को दूसरों के संग साझा करता तो जीवन की जलधारा उसके हृदय से बह निकलती है। यद्यपि मानव जाति के पापों के खातिर प्रेम भरी आज्ञाकारिता में क्रूस पर अर्पित किया बलिदान सबसे अधिक और अनंत संतुष्टि प्रदान करता है, कलिसिया को हम ख्रिस्त के हृदय से जन्मता पाते हैं जो हर समय और परिस्थिति में विकसित होता और हमें दुख भोग का एक मुक्तिदायी फल प्रदान करता है जो नर और नारियों को सीधे तौर से ईश्वर के संग संबंध स्थापित करने को प्रेरित करता है। श्रोताओं, कलिसिया के केंद्र बिंदु में मरियम की मध्यस्थता, जो हमारी मध्यस्थ हैं, अपने में केवल एक साझा स्रोत के रूप में समझी जा सकती हैं, जो अपने में हमारे लिए स्वयं यीशु ख्रिस्त की मध्यस्थता है, जो हमारे लिए एक मुक्ति दाता है। इस कारण से कलिसिया मरियम के अधीनस्थ भूमिका को स्वीकार करने में संकोच नहीं करती है। मरियम के हृदय की आराधना हमें ख्रिस्त के हृदय की आराधना से विमुख नहीं करती है, बल्कि यह उसमें वृद्धि करती है। मरियम का मानव जाति की माता के रूप में कार्य हमारे लिए किसी भी रूप में यीशु की मध्यस्थता को कम या धूमिल नहीं करती है, बल्कि यह उसकी शक्ति को अभिव्यक्त करती है। ख्रिस्त के खुली बगल से प्रवाहित होने वाली कृपाओं की प्रचुरता के प्रति हम कृतज्ञ हैं। कलिसिया में विभिन्न रूपों में कुमारी मरियम और सभी विश्वासी गण अपने में संजीवन जल बनते हैं। इस भांति ख्रिस्त छोटे रूप में अपनी महिमा को हम सबों में प्रकट करते हैं। श्रोताओं, संत बेर्नार्ड यीशु ख्रिस्त के हृदय के बारे में अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि इस आराधना की समृद्धि प्रेम में परिवर्तन हेतु हमें एक निमंत्रण प्रदान करती है। संत बेर्नार्ड इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा प्रेम, जो खुशी में बंधे होते हुए भी हमें परिवर्तन की ओर अग्रसर करता और हमारे लिए मुक्ति का कारण बनता है, यह एक नियम की अंधी आज्ञाकारिता में नहीं होता है, बल्कि मसीह के मनोरम प्रेम के उत्तर में होता है। जब हम बुराई पर अच्छाई से विजयी होते हैं, जो प्रेम के पुष्पीकरण से जीता जाता है। अपने ईश्वर को अपने हृदय की गहराई से प्रेम करो, उसे अपने सारे मन, दिल, चेतना और इच्छा से प्रेम करो, उसे अपनी सारी शक्ति से प्रेम करो, इतना अधिक कि उनके प्रेम में तुम्हें मरने के लिए कोई भय ना हो। यीशु ख्रिस्त के लिए तुम्हारा स्नेह दोनों मीठी और अंतरंग हो, जो कामुक जीवन के मीठी आकर्षण का विरोध करने हेतु हो। मीठेपन से मीठेपन पर जीत हासिल होती है, वैसे ही जैसे कि एक कील दूसरे कील को बाहर निकालता है। श्रोताओ, संत फ्रांसिस डिसेल्स विशेष रूप से यीशु ख्रिस्त के शब्दों से प्रभावित थे, मुझसे सीखो, मैं हृदय से नम्र और विनीत हूँ। यहाँ तक कि सबसे साधारण चीजों और बातों में वे कहते हैं, हम ईश्वर के हृदय को चुरा सकते हैं। वे लोग जो उनकी सेवा करेंगे, उन्हें न केवल बड़ी और महत्वपूर्ण मामलों को ध्यान देना चाहिए, बल्कि छोटी और तुच्छ चीजों को भी, क्योंकि दोनों चीजों के द्वारा हम हृदय और प्रेम को जीतते हैं। मेरे कहने का अर्थ, रोज दिन का सहन, सिर दर्द, दांत दर्द, कड़ाके की सर्दी, एक पति या पत्नी का विचित्र व्यवहार, टूटा हुआ कांच, खोई हुई एक अंगूठी, एक रूमाल, एक दस्ताना, एक पड़ोसी का स्नेह, जल्दी सोने जाने और जल्दी उठने का प्रयास जिससे समुदाय की प्रार्थना में सम्मिलित हो सके, धार्मिक क्रियाकलापों को खुले रूप में करने हेतु कुछ लोगों में थोड़ा लज्जा का अनुभव, हम इस बात से सुनिश्चित हों, ये सारे दुख, चाहे वे छोटे ही क्यों ना हों, यदि हम उन्हें प्रेम से स्वीकारते हैं, तो वे ईश्वर के लिए अति प्रिय बातें होती हैं। अंततः, यद्यपि ईश्वर के लिए हमारा प्रेम अपने पड़ोसियों को प्रेम करने में प्रकट होता है, एक प्रेम जो अपने में सुदृढ़, निरंतर, अचल, छोटी चीजों या लोगों के जीवन की स्थिति से निश्चित रहता है, यह परिवर्तन या दुश्मनी के अधीन नहीं होता। हमारे ईश्वर हमें बेइंतहा प्रेम करते हैं, हमारे कई दोषों और हमारे सभी दोषों को सहन करते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हम भी अपने भाई और बहनों के संग ऐसा ही करें, हम उन्हें सहन करने हेतु कभी ना थकें। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी उस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया राजा, होकर प्रजा बना, स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया, राजा होकर प्रजा बना। मेरे गुनाहों की माफी देने, मेरे गुनाहों की माफी देने आया तू, आया तू आया, पर मैंने न तुझको पहचाना, पर मैंने न तुझको पहचाना। क्षमा करो, क्षमा करो, जो भी आया सजा देने आया, पापियों का अंत करने आया,
पापियों का अंत करने आया,
मुझको तू जीवन देने आया, आया तू आया तू आया, पर मैंने न तुझको पहचाना, पर मैंने पहचाना।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें संत पेत्रुस के 16वें उत्तराधिकारी बन गए हैं, जो कास्टेल गंडोल्फो में अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने गए हैं। 10 मई 1626 को संत पापा उर्बान अष्टम कास्टेल गंडोल्फो में गर्मियों की छुट्टियां बिताने वाले पहले संत पापा बने। तब से रोम से लगभग 25 किलोमीटर दूर लाजियो क्षेत्र के इस शहर ने गर्मियों के मौसम में परमाध्यक्षों की मेजबानी की है। इस साल संत पापा लियो 14वें 6 जुलाई से 20 जुलाई तक और फिर 15 से 17 अगस्त तक अपनी छुट्टियां वहीं बिताएंगे। अपने निर्वाचन के बाद संत पापा लियो 14वें पहले से ही 2 बार कास्टेल गंडोल्फो आ चुके हैं। पहली बार 29 मई को जब उन्होंने लौदातो सी गांव और प्रेरितिक पैलेस का दौरा किया, और फिर 3 जुलाई को जब वे विल्ला बारबरेनी में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के लिए लौटे, जहां वे अपनी छुट्टियों के दौरान रह रहे हैं। परिणाम स्वरूप इमारत के भूतल पर स्थित एंटीक्वारियम जनता के लिए बंद होगा। यह स्थान पुरातात्विक कलाकृतियों को संरक्षित करता है और संग्रहालय का एक हिस्सा है, क्योंकि 2016 में संत पापा फ्रांसिस द्वारा इस निवास को जनता के लिए खोल दिया गया था। इसलिए संत पापा लियो 14वें प्रेरितिक पैलेस में नहीं बल्कि विला बारबरेनी में रहेंगे। उनके प्रवास के दौरान भी संग्रहालय का दौरा जारी रहेगा। हालांकि संत पापा के सार्वजनिक कार्यक्रमों और विशेष रूप से रविवार के देवदूत प्रार्थना के दौरान श्रद्धालु पास के लिबर्टी स्क्वायर में इकट्ठा होंगे। उधर परम धर्मपीठ या संस्कृति और शिक्षा विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल जोस टोलेंटिनो को मानव बंधुत्व के लिए 7वें वार्षिक जायद पुरस्कार की निर्णायक समिति में नियुक्त किया गया है। यह पुरस्कार, जिसमें 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार है, फरवरी 2019 में संत पापा फ्रांसिस की अल अजहर के ग्रैंड इमाम के साथ ऐतिहासिक बैठक और दोनों द्वारा मानव बंधुत्व पर संयुक्त दस्तावेज के प्रकाशन के बाद स्थापित किया गया था। दस्तावेज पर हस्ताक्षर संयुक्त अरब अमीरात में हुए और अब यह देश पुरस्कार को प्रायोजित करता है, जिसका नाम इसके संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के सम्मान में रखा गया है। पुरस्कार विजेताओं का चयन एक स्वतंत्र जूरी द्वारा किया जाता है, जिसकी संरचना हर साल बदलती रहती है, जिसके सदस्यों में हमेशा संत पापा द्वारा चुना गया एक व्यक्ति, अल अजहर ग्रैंड इमाम द्वारा चुना गया एक व्यक्ति और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा चुना गया एक व्यक्ति होता है। कार्डिनल टोलेंटिनो के साथ इस वर्ष के निर्णायक समिति में कैथरीन रसेल, यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक, चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष और बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री, मूसा फक्की महामत, अफ्रीकी संघ आयोग के पूर्व अध्यक्ष और चाड के पूर्व प्रधानमंत्री, सईदा मिर्जी योयेवा, उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के प्रशासन के प्रमुख, जज मोहम्मद अब्देल सलाम, मानव बंधुत्व के लिए जायद पुरस्कार के महासचिव शामिल हैं। जायद पुरस्कार का उद्देश्य उन व्यक्तियों और समूहों को मान्यता प्रदान करना है जिन्होंने मानव बंधुत्व को आगे बढ़ाने, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने और सहिष्णुता एवं एकजुटता के मूल्यों की वकालत करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उधर धर्मसभा के महासचिव ने धर्मसभा के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन जारी किया जो सिनोडालिटी पर धर्मसभा के कार्यान्वयन चरण को समझने के लिए एक व्याख्यात्मक कुंजी प्रदान करता है। सोमवार को धर्मसभा द्वारा जारी धर्मसभा के कार्यान्वयन चरण के लिए मार्गदर्शन दुनिया भर में स्थानीय कलीसियाओं को एक साझा ढांचा प्रदान करता है जो एक साथ चलना आसान बना देगा और संवाद को बढ़ावा देता है जो पूरी कलीसिया को कलीसियाई सभा की ओर ले जाएगा। यह अक्टूबर 2028 के लिए निर्धारित है जो 2020 में संत पापा फ्रांसिस द्वारा शुरू की गई धर्मसभा प्रक्रिया की परिणति को चिन्हित करेगा। मार्ग खोलते हुए धर्मसभा के महासचिव कार्डिनल मारियो ग्रेच ने कहा कि कलीसियाई धर्मसभा अपने मिशन की सेवा में है। यह इस मिशन की तात्कालिकता है जो हमें धर्मसभा को लागू करने के लिए प्रेरित करती है, एक ऐसा कार्य जिसके लिए सभी बपतिस्मा प्राप्त लोग जिम्मेदारी साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि धर्मसभा का सचिवालय जिसने नया दस्तावेज तैयार किया है स्थानीय कलीसियाओं की सेवा में है, उनकी बात सुनने, उनके प्रयासों का समर्थन करने और सबसे बढ़कर कलीसियाओं के बीच संवाद और उपहारों के आदान प्रदान को जीवंत बनाने में योगदान देने के लिए तैयार है। उधर पूर्वी कलीसियाओं के लिए गठित विभाग के एक बयान में संत पापा लियो 14वें द्वारा कोशिचे के बेंजेंटाइन धर्माध्यक्ष सिरिल वासिल के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया गया है जिन्होंने संत पापा के प्रतिनिधि के रूप में अपना कार्य पूरा किया। संत पापा फ्रांसिस ने 2 साल पहले धर्माध्यक्ष सिरिल वासिल को धार्मिक मुद्दों पर विभाजित और संघर्षरत समुदाय में शांति बहाल करने का मिशन सौंपा और आज पूर्वी कलीसियाओं के लिए गठित विभाग के अनुसार संत पापा लियो 14वें ने सीरो मालाबार के एर्नाकुलम अंगमाली के धर्म प्रांत के लिए धार्मिक मामलों में संत पापा के प्रतिनिधि के रूप में अपने कार्य के समापन पर बाइजेंटाइन के कोशिचे धर्माध्यक्ष सिरिल वासिल के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। जैसा कि कतर में शांति वार्ता जारी है, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू आगे की चर्चा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए वाशिंगटन डीसी की यात्रा पर हैं। युद्ध के 2 साल पूरे होने से मात्र 3 महीना पहले इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता एक बार फिर शुरू की गई है। पिछले महीने ईरान के खिलाफ 12 दिनों के इजरायली हवाई युद्ध के बाद युद्ध विराम वार्ता फिर से शुरू हुई। हमास और इसराइल के बीच कतर में दूसरे दिन भी अप्रत्यक्ष वार्ता जारी रहने वाली है जिसमें गाजा में युद्ध विराम और बंधक समझौते को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।